पद्मिनी, वाह कपिल, गाड़ी कितनी अच्छी हाँकते हो, हाथ का हिलना भी नहीं दिखाई देता, पर बैल अपने आप जिधर चाहो मुड़ते जाते हैं। कपिल खुशी से हंसता है। थोड़ी देर यहीं क्यों न रुकें? सवेरे से गाड़ी में बैठे बैठे मेरे तो पांव जम गए हैं। कपिल, जरूर अभी गाड़ी रोके देता हूँ। गाड़ी जैसे रुकती है तीनों उतरते हैं। तभी पद्मिनी का पांव जरा फिसलता है और देवदत्त संभालता है। पद्मिनी, बड़ा ही विकट रास्ता है, इतना पथरीला कि पांव टिक ही नहीं पाते। गाड़ी में तो पता ही नहीं चलता था, तुम ऐसे हाँक रहे थे मानो गाड़ी तैर रही हो। मुझे याद है एक बार देवदत्त मुझे गाड़ी में ले गए, विवाह के तुरंत बाद की ही बात है। मैंने नगर के बाहर झील दिखा लाने की हट की थी, बस घर से निकल पड़े हम दो ही। देवदत्त हाँक रहे थे, मेरी इच्छा नहीं थी, फिर भी नगर कोट का फाटक भी नहीं पार किया होगा कि दोनों बैल रास्ते को छोड़कर चलने लगे। ये दाएं हाँकते तो बैल बाएं मुड़ जाते और बाएं हाँकते तो दाएं निकल जाते। मेरा हंसते हंसते बुरा हाल, पर श्रीमान जी इतने बिगड़े कि वैसे ही लौट आए। हंसती है पर वे दोनों चुप रहते हैं। कपिल, क्या वह क्या फूल है जिनसे वह पेड़ लदा पड़ा है? कपिल, उन्हें सुहाग के फूल कहते हैं। पद्मिनी, बड़ा विचित्र नाम है, क्यों कहते हैं? कपिल, ठहरो तोड़े लाता हूँ, आप ही समझ जाओगी। जाता है। पद्मिनी कपिल को निहारते हुए, स्वागत, कैसे बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ गया? कहने से पहले ही कुर्ता उतार धोती कस एक ही छलांग में डाली पर पहुंच गया, जैसे फुर्ती का फव्वारा हो। कैसी सुडौल काया, चौड़ी पीठ, तरंगों की सी थिरकती मांसपेशियों से भरे समुद्र की तरह, और वह छोटी पतली कमर निहारती रही तो रोम रोम खिल उठा। देवदत्त, स्वागत, दिन भर कितना बोल रही थी, सांस तक न लेती थी, पर अब क्यों चुप हो गई? पद्मिनी, स्वागत, जैसे किसी गंधर्व ने शिकारी का जन्म लिया हो, उसकी देह थिरकती है, अंग अंग फड़कते हैं, जैसे कोई नृत्य हो। देवदत्त, स्वागत, पद्मिनी का भी क्या दोष, कपिल का शरीर ही इतना आकर्षक है, अचरज है, इतने बरस साथ रहे पर इस आकर्षण का भान तक नहीं हुआ, कितना अबोध था, एकदम बच्चा। पद्मिनी, स्वागत, न जाने यह किस भाग्यशालिनी का हाथ थामेगा यह सुडौल काया, कोई भी नारी मुग्ध हो जाए। देवदत्त, स्वागत, सच कोई भी नारी मुग्ध हो जाए, कुंवारी हो चाहे सुहागिन। हाँ, कुंवारी चाहे सुहागिन, कैसा मूर्ख था मैं, आज तक कपिल की केवल याचना भरी दान की भीख मांगती आंखों को ही देखा था, पद्मिनी की आंखें नहीं पढ़ी थी, जब कभी देखा भी सतह के नीचे न झांक सका, आज ही गहराई की झलक मिली है और वहां से उठती लपटें दिखाई पड़ रही हैं। आज इतने दिनों बाद विचलित होकर देख देख देवदत्त, देख अच्छी तरह देख, पद्मिनी की आंखों से लपकती उस पीली जामुनी ज्वाला को देख, देख वह कैसे अपने संपूर्ण अंतरंग को पिघलाकर कपिल के सांचे में उड़ेल रही है। देख, भले ही तेरी अंतड़ियां झुलस जाएं, भले ही फेफड़े जलकर राख हो जाएं, पर मुंह न फेर, देख और चीख मत, अपनी यातना को गले में ही घोंट दे, अपनी संगिनी को आंखों में झांक, तब तक झांकता रह जब तक उनकी मयूरी ज्वाला में तेरा अंधापन भस्म न हो जाए, अब काया मत बन। पद्मिनी, स्वागत, ऐसे कब तक चलेगा, कब तक, हे ईश्वर, आगे क्या होगा अगर देवदत्त ने देख लिया? दोनों की नजर मिल जाती है, पद्मिनी आंखें फेर लेती है और कपिल को आते देखकर हंस पड़ती है। अरे देखो ना, एक फूल मांगा तो ढेर सारे ला दिए। कपिल अंजुरी भर फूल लाने और पद्मिनी के सामने उन्हें गिराने का अभिनय करता है। कपिल, भाभी ये ही है वे सुहाग के फूल। पद्मिनी हंसकर, सुहाग के फूल क्यों? कपिल, यह देखो, पीली पंखुरियां और इन पंखुरियों के तल में एक बड़ा लाल घेरा जैसे तुम्हारी सिंदूर की बिंदी, और यहाँ जहाँ पराग फूटा है वहाँ मांग में भरी सिंदूर रेखा, देख लो, और डंठल के पास एक काली काली बिंदियां जैसे तुम्हारे मंगलसूत्र की काली मणियां हो। पद्मिनी, वाह कितना कितनी सुंदर कल्पना है, देवदत्त से अपनी कविता में उपयोग करना, बढ़िया उपमा होगी। देवदत्त, अब चलो, बहुत देर हो गई। पद्मिनी, जरा रुको ना, मैं सवेरे से गाड़ी में बैठी बैठी उबता गई हूँ। थोड़ा यहीं आसपास क्यों न टहल चलें? मुझे पता ही नहीं चला कि उज्जैन का रास्ता इतना सुहावना है। कपिल, बाकी लोग दूसरे रास्ते से जाते हैं, यह रास्ता थोड़ा बिहड़ है, इसलिए इधर से अधिक लोग नहीं जाते, पर मुझे यही पसंद है और यह 10 कोस छोटा भी है। पद्मिनी, 10 कोस लंबा भी होता तो भी बुरा न लगता, एकदम बाग जैसा लगता है। कपिल उत्साह से, है ना? भाभी उधर देखो, वह भार्गवी नदी है, कहते हैं उसी के पास व्यास जी का आराम था और अब वहाँ भगवान रुद्र का मंदिर है। देवदत्त जैसे अचानक जागकर, भगवान रुद्र का मंदिर? कपिल, हाँ बड़ा सुंदर मंदिर है और वहाँ उस पहाड़ के पीछे माँ काली का मंदिर है। दो पर्दे वाले आते हैं और काली के चित्र वाला पर्दा थामे खड़े हो जाते हैं। भागवत सामने एक तलवार रख देता है। कहते हैं एक जमाने में यहाँ बड़ी भीड़ हुआ करती थी, पर अब तो खंडहर रह गया है। देवदत्त, स्वगत अपनी ही धुन में खोया, भगवान रुद्र का मंदिर? कपिल, हाँ वह भी पुराना है, फिर भी उतना टूटा फूटा नहीं जितना काली का मंदिर, चाहो तो देखने चल सकते हैं। पद्मिनी, हाँ हाँ चलें। देवदत्त, तुम लोग पहले काली का मंदिर क्यों नहीं देख आते? कपिल, नहीं वहाँ नहीं, बहुत उजड़ा पड़ा है, आसपास सांप की बाबियां, चमगादड़, रास्ता भी काफी कटीला है, रुद्र मंदिर चल सकते हैं, वह पास भी है। पद्मिनी, चलो ना देखाए। देवदत्त, तुम दोनों जाओ मैं नहीं। पद्मिनी, और तुम क्या करोगे? देवदत्त, यहीं बैठा रखवाली करूंगा। कपिल, नहीं नहीं, यहाँ चोर डाकुओं का कोई डर नहीं है। तनाव को अनुभव करके, तुम कहो तो मैं यहाँ ठहर जाऊं। देवदत्त, नहीं नहीं तुम दोनों जाओ, मैं थक भी गया हूँ। पद्मिनी, स्वगत, लो इन्होंने फिर शुरू कर दिया अपना चिड़चिड़ापन, बच्चों की तरह अकड़ रहे हैं। ठीक है, जो जी में आए करें, मेरा क्या, जोर से चलो कपिल, हम देख आएंगे। कपिल, लेकिन भाभी तुम्हारी ऐसी दशा में। पद्मिनी चिढ़कर, दशा दशा, कौन सी दुर्दशा हो गई है मेरी? नहीं चलना है तो ऐसा कहो, बिना बात बहाने मत बनाओ। कपिल, देवदत्त मंदिर कोई दूर नहीं, चलो ना। देवदत्त, कहा ना तुम दोनों ही जाओ, मेरी चिंता मत करो। पद्मिनी, छोड़ो कोई नहीं जाएगा, मेरी वजह से तुम दोनों को क्यों कष्ट हो? देवदत्त कपिल से, मैं कह रहा हूँ तुम दोनों जाओ। कपिल आचार्य से, चलो भाभी देखकर जल्दी लौट आए। दोनों जाते हैं। देवदत्त, जाओ पद्मिनी, जाओ कपिल, भगवान रुद्र का आशीर्वाद तुम दोनों पर रहे, तुम दोनों मेरे हृदय के दो टुकड़े हो, एक होकर रहो, उसी में मुझे शांति मिलेगी विह्वल होकर। पिता रुद्र, मेरा हाथ कांप रहा है, मैं नहीं जानता था मैं इतना डर जाऊंगा, मुझे साहस दो प्रभु, साहस दो। महाकाली के मंदिर की ओर बढ़ता है, पहाड़ चढ़ने का अभिनय करता हुआ रंगमंच की एक परिक्रमा लगाकर मंदिर पहुंचता है, थका हुआ है और आते ही काली के सामने सिर नवाता है। माँ भवानी, माँ कालिका, दुर्गे, महामाया, मैं अपना वचन भूल गया था, मुझे क्षमा कर दो माँ, तूने मेरी इच्छा पूरी की, पद्मिनी मेरी अर्धांगिनी हो गई, उसी दिन मुझे अपना वचन याद आना चाहिए था, लेकिन तेरे दिए भोग विलास में मैं तुझी को भूल गया, ले अब उसी वचन को पूरा करने आया हूँ। सामने पड़ी तलवार उठाकर, तेरी महिमा अपार है, वचन पूरा करने के लिए तूने तलवार भी जुटा रखी है, नहीं तो इस दुर्गम स्थान में तलवार कहाँ से आती, या कोई देवी या भक्त, कोई कापालिक या शिकारी उसे यहाँ छोड़ गया हो, कौन जाने इस तलवार से कितने जीवों की बल तेरे चरणों में चढ़ाई हो। ऊंची आवाज में, ले माँ मेरा मस्तक, यह तुच्छ भेंट अपने चरणों में स्वीकार कर। सिर काटने के लिए तलवार उठाता है, तलवार की धार को गर्दन पर गड़ाया जाता है, बड़ा कष्ट होता है, छटपटाता है और शक्ति लगाता है, अंत में सिर अर्थात मुखौटा शरीर से अलग हो जाता है, संभव हो तो रक्त की बहती धारा दिखाई जा सकती है, सन्नाटा। इसी समय दूसरी ओर से पद्मिनी और कपिल अपनी गाड़ी के पास आते हैं। पद्मिनी बातें करती हुई प्रवेश करती है। पद्मिनी, ये भी साथ होते तो बड़ा आनंद आता, कितनी सुहावनी जगह थी, पर करें क्या, ऐसी चीजों में इनका मन रमता ही नहीं, सब बार कहा होगा। देवदत्त को न पाकर कहाँ गए, दोनों इधर उधर देखते हैं। कहा था थका हूँ यही बैठा रहूंगा। कपिल, देवदत्त अस्थिर भाव से, कहाँ चला गया? पद्मिनी, यही कहीं गए होंगे, आ जाएंगे, बहुत ढीले हैं, तनिक चले नहीं कि? कपिल, देवदत्त, देवदत्त। पद्मिनी, क्यों बिना बात चिल्ला रहे हो, बैठो, आते होंगे। कपिल जमीन पर कुछ देखता है और उसके मुंह से आश्चर्य की चीख निकल पड़ती है। क्या है? कपिल, उसके पांव की छाप, लगता है देवदत्त उधर उस तरफ गया है रुक कर, लेकिन वहां तो महाकाली का मंदिर है। पद्मिनी, जाने इन्हें क्या हो गया है आज, रुद्र मंदिर नहीं चले, अकड़े रहे और अब आप ही टहलने चले गए। कपिल, भाभी तुम यहीं बैठी रहो, मैं एक बार देख आता हूँ, पता नहीं कहाँ निकल गया, जाने लगता है। पद्मिनी, अब तुम कहाँ भटकने चले, आ जाएंगे दिन दहाड़े, यहाँ किसका डर है? कपिल, जाते जाते, नहीं भाभी, बड़ा घना जंगल है, चट्टाने हैं, रास्ता भटक गया तो सारी रात यहीं बितानी पड़ेगी, तुम ठहरो, मैं बस गया और आया, चला जाता है। पद्मिनी, यह भी चला गया, सचमुच लगता है इसे मुझसे ज्यादा उनकी चिंता है। पद्मिनी बैठ जाती है। कपिल देवदत्त के पांव के निशानों का पीछा करता हुआ बड़ी शीघ्रता से मंदिर में पहुंचता है। वहां देवदत्त का शरीर देखकर भय से चीखने को होता है, फिर दौड़कर देवदत्त के पास घुटनों के बल बैठता है और देवदत्त के मस्तक को लिए अस्फुट स्वर में कराहने लगता है। कपिल, सिर काट दिया, अपना सिर काट दिया, हाय मेरे मित्र देवदत्त, यह तुमने क्या किया, सचमुच तुम मुझसे रूठ गए, तुम्हें मुझसे इतनी विरक्ति थी, इतनी घृणा थी, अपने क्रोध में शायद तुम भूल ही गए कि मैं तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार हूँ, तुम कहते चिता में कूद पड़ो तो बिना झिझक कूद जाता, कहते देश छोड़ दो तो दूर देशांतर निकल जाता, कहते जाकर नदी में डूब जाओ तो खुशी से डूब मरता, क्या तुम्हें मेरा इतना भी भरोसा नहीं रहा कि मुझे आदेश दो? हाँ मैंने भूल की थी, पर तुम तो जानते थे मैं नादान हूँ, मुझे अच्छे बुरे की समझ नहीं, मैं सोच नहीं पाता, बस इसी बात पर तुमने मुझे अपने से दूर हटा दिया। देवदत्त, मेरे भाई, मेरे पिता, मेरे मित्र, तलवार उठाकर, मेरे प्यारे मित्र, मुझसे दुखी होकर तुमने यह संसार छोड़ दिया, लेकिन परलोक में तो मिलोगे, अपने पुराने मित्र को स्वीकार तो करोगे, लो मैं आता हूँ, सदा की तरह तुम्हारे ही चिन्हों पर चलता हुआ। सिर काट लेता है बिना किसी कष्ट के। पद्मिनी अपने स्थान पर बैठे बैठे ऊब कर, कहाँ गए दोनों, यह कपिल भी गायब हो गया, अभी तक उन्हीं को ढूंढ रहा होगा, यही नहीं, यह संभव नहीं, वे तो इतने कमजोर हैं, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, कपिल ने अब तक तो ढूंढ ही लिया होगा, पता नहीं इतनी देर तक दोनों कहाँ बैठे होंगे, होंगे कहीं गप्पे मारते, स्त्री का जंजाल छूटा, पुराना मित्र अकेले में मिला तो बस घंटों बातें किया करो, या सचमुच ये रूठे हों और अब कपिल को सामने बिठाकर अपनी चुप्पी से कपिल को सता रहे हों। पहले से ही माथा गर्म था। विराम, अभी तक कोई नहीं आया, अंधेरा हो रहा है, कैसे निर्लज्ज हैं दोनों, मुझे अकेली को यहाँ छोड़ गए, रत्ती भर भी मेरी परवाह नहीं, नहीं यहाँ रहने से कोई लाभ नहीं, चलो खुद ही उन दोनों को ढूंढो, मुझे रास्ते में सांप काट ले तो उन्हें तो अच्छा ही है, बला टली। देवदत्त के पांव के निशानों पर चलती हुई मंदिर तक पहुंचते पहुंचते थक जाती है, आंखें मलकर अंधेरे में कुछ देखने की चेष्टा करती है, कितना घुप अंधेरा है यहाँ, कुछ नहीं दिखाई देता, आवाज देकर, कपिल कपिल, लगता है वे भी यहाँ नहीं है, मैं क्या करूँ अब, इतनी रात गई अकेली, खटका सुनाई पड़ता है, मयारी कौन है, सियार सब शायद यही बाहर चक्कर लगा रहा होगा, अगर कहीं भीतर आ गया तो, हाय राम, जान बची, चला गया, माँ काली तू मेरी रक्षा कर, तेरी ही शरण में माँ शरीरों से टकराती है चौंक कर, क्या है यह क्या है, टटोल कर देखती है, फिर सहसा चीख पड़ती है, रोने लगती है, हाय भगवान यह क्या हुआ, दोनों के दोनों, दोनों चल दिए, मरने से पहले मुझे याद तक नहीं किया, अब मैं क्या करूं, हाय देवदत्त, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि ऐसी हालत में मुझे अकेली छोड़ गए, मुझ पर तुम्हारा इतना ही प्यार था, और कपिल तुम भी कुत्ते की तरह गिड़गिड़ाती आंखों से मुझे देखते थे, तुमने भी मेरा विचार नहीं किया, कितने स्वार्थी हो तुम दोनों, निर्दयी माँ दुर्गा, अब तू ही राह बता, अब तेरे सिवा मेरा कौन है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, अपने घर जाऊँ पर कैसे, विराम, घर घर जाकर भी क्या करूँगी, कौन सा मुँह लेकर जाऊंगी, क्या कहूंगी, क्या समाचार दूंगी, कौन मेरा भरोसा करेगा, लोग तो कहेंगे इस कलमुही के पीछे दोनों लड़ मरे, हाँ यही कहेंगे, कहेंगे ही, तो फिर मेरा क्या होगा, यह सोचते ही शरीर थरथरा जाता है। नहीं माँ नहीं, कपिल चला गया, देवदत्त चला गया, अब मैं भी उनके साथ ही चलूं, तलवार उठाती है, अपना सिर काट लेने की शक्ति भी मुझ में नहीं है, लेकिन माँ तुझे क्या, कोई कैसे भी मरे, तुझे तो एक और बल चाहिए, ले स्वीकार कर तीसरी बल, अपने सीने पर तलवार रखती है और दोनों हाथों से तलवार की धार पर अपने सीने को दबाती है। उसी समय देवी के चित्र वाले पर्दे के पीछे से देवी की आवाज सुनाई पड़ती है, देवी ए, पद्मिनी भय से सुन्न पड़ जाती है, रख नीचे तलवार, नीचे रख, पद्मिनी तलवार फेंक भय से मंदिर के बाहर दौड़ती है, लेकिन वहां किसी को नहीं पाती। पद्मिनी कौन है, उत्तर नहीं, कांपती आवाज में कौन है, मादलों का शोर, भय से पद्मिनी आंख कान बंद कर लेती है, पर्दे के पीछे से महाकाली की पसारी हुई लाल हथेली दिखाई देती है, पर्दा नीचे आता है और पीछे खड़ी देवी दिखाई देती है, पसरे हाथ, खुला मुंह, देवी बड़ी भयानक लगती है, पर जैसे ही बाजे थम जाते हैं तो लगता है देवी अंगड़ाई ले रही थी और जम्हाई ले रही थी। देवी जम्हाई की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आंखें खोल, हाँ शीघ्र आंखें खोल, देरी मत कर, पद्मिनी आंखें खोल देखती है और दौड़कर चरणों में गिर पड़ती है। पद्मिनी माँ देवी, देवी उन्हीं आवाज में, हाँ मैं ही हूँ, बरसों पहले यहाँ इस समय मंगल आरती होती थी, सारे भक्त मिलकर घंटा, घड़ियाल, मादल, पखावज, ताल, मंजीरा, शंख इतने जोर से बजाया करते थे कि कान फट जाते। उस भयंकर शोर से आरती की वेला में मैं पूरी तौर से जागी रहती थी, पर अब न भक्त है न आरती, जागे रहने की आदत भी छूट गई। फिर जम्हाई लेती है, हाँ ठीक, अब तू क्या चाहती है बता, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हो गई हूँ। पद्मिनी माँ मुझे बचाओ। देवी वह तो जानती हूँ, अभी अभी बचाया ना। पद्मिनी हाय माँ, इसे बचाना कहती हो तुम, अब बच कर भी कहाँ जाऊँ, कौन सा मुँह लेकर घर लौटू, कैसे अपना। देवी कुछ चिढ़ कर, हाँ हाँ वह सब तो पहले सुना चुकी है, दोहराने की आवश्यकता नहीं, अब जो मैं कहूँ सोकर, इन मस्तकों को उनके धड़ों पर ठीक से लगा, फिर उस तलवार से उनकी गर्दनों को दबा दे, वे तुरंत जी उठेंगे। अब तो ठीक। पद्मिनी माँ तुम्हारा ही सहारा है, तुम ही सांस हो, तुम ही अन्न हो, जल। देवी बस बस, जो कहा सो कर जल्दी, मैं नींद से लड़खड़ा रही हूँ। पद्मिनी हिचकती हुई, माँ एक बात पूछूं। देवी हाँ हाँ, पर थोड़े में। पद्मिनी माँ तुमसे कौन सी बात छिपी है, भूत भविष्य वर्तमान सब तुम्हारी हथेली पर है, तो फिर देवदत्त को तुमने क्यों नहीं रोका, कपिल को क्यों नहीं रोका, उनमें से एक को भी बचा लेती तो इस यातना से, इस आतंक से मैं बच जाती, तुम क्यों चुप रही। देवी आश्चर्य से, इस घड़ी बस यही बात सूझी तुझे। पद्मिनी माँ, देवी तेरा जैसा मांगने वाला मैंने कभी नहीं देखा। पद्मिनी तुमसे कोई कुछ नहीं छिपा सकता माँ। देवी यह सच है। पद्मिनी तो फिर तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका। देवी रोकने की बात कहती है, मैं इतनी उन्नीदी न होती तो दोनों को निकाल कर बाहर करती। पद्मिनी क्यों माँ। देवी दुष्ट कहीं के मरते दम तक झूठ बोलते रहे, वह देवदत्त, उसने शपथ ली थी मेरे आगे भुजाएं और रुद्र के आगे मस्तक चढ़ाएगा, देखा मेरे लिए बस भुजाएं और रुद्र के लिए मस्तक, पर जब तुमने रुद्र मंदिर जाने की हट की तो यह और कहां जाता, यहीं आना पड़ा, बस अपना सिर चढ़ा दिया। ऐसा है महान भक्त देवदत्त, पाखंडी दुनिया भर का। और दूसरा वह कपिल, मेरे आगे सिर चढ़ाया पर मरते मरते भी मित्र मित्र रटता रहा, एक बार भी मेरा नाम नहीं लिया, शिष्टता के नाते भी नहीं पाजी, और पक्का झूठा, बोला मित्रता के लिए मरता हूँ, मित्रता के लिए, डरपोक। उसे जरूर लगा होगा कि लोग कहेंगे तेरे लिए उसने देवदत्त की हत्या की। यह डर न होता तो जरूर तेरे ऊपर अधिकार जमाता, पर राक्षस मरते दम तक मेरे मित्र मेरे भाई चिल्लाता रहा, सच बस तू ही बोली। पद्मिनी, सब तुम्हारी ही कृपा है माँ। देवी, मेरी कृपा कृपा कुछ नहीं, तू भी स्वार्थिनी है इसलिए सच बोली। बस अब बेकार की बातें छोड़, मैंने कहा वह कर, आंख मीच कर खड़ी न हो। पद्मिनी, जो आज्ञा माता। पद्मिनी हड़बड़ी और उतावली में धड़ों पर सिर लगाती है, यानी मुखौटों को चिपका देती है, पर घबराहट में मुखौटे बदल जाते हैं। देवदत्त का मुखौटा कपिल के शरीर पर और कपिल का देवदत्त के शरीर पर। गर्दनों को तलवार से दबाती है, माता के चरणों में माथा टेकती है और फिर रंगमंच पर आगे आकर देवी की तरफ पीठ करके आंखें मीच कर खड़ी हो जाती है। सब कुछ कर दिया माँ। देवी जैसे हार मानकर, बेटी सच्चाई की भी कोई सीमा होनी चाहिए, खैर चलो तथास्तु। फिर मादल मृदंगों की आवाज, पर्दा उठाया जाता है और देवी पर्दे के पीछे चली जाती है, और जैसे ही आगे का दृश्य आरंभ होता है पर्दे वाले भी रंगमंच से हट जाते हैं। पद्मिनी आंखें बंद किए खड़ी है, मादल मृदंगों की ध्वनि थम जाती है, थोड़ी देर के लिए गहरा सन्नाटा, फिर धीमे धीमे देवदत्त और कपिल के शरीर हिलने लगते हैं, उनकी सांसें सुनाई पड़ती हैं, वे धीरे से उठते हैं जैसे समूचा शरीर अकड़ गया हो। दोनों की चाल ढाल यांत्रिक है, जैसे शरीर में रक्त का प्रवाह अभी ठीक से शुरू न हुआ हो। कुछ चकराए से अपने आप हाथ और मुंह टटोल टटोल कर पहचानने की कोशिश करते हैं, चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हैं। अब से देवदत्त के मुखौटे वाला देवदत्त और कपिल के मुखौटे वाला कपिल माना जाएगा। दोनों खड़े होने की कोशिश करते हैं, बड़ी कठिनाई हो रही है, अपने को संभाल नहीं पाते, पर जैसे तैसे खड़े होते हैं। पद्मिनी निश्चल होकर भ्रम और उत्सुकता से घड़ियां गिन रही है। देवदत्त, क्या हुआ? कपिल, क्या हुआ? पद्मिनी आंखें खोलती है पर उनकी ओर देखने का साहस नहीं होता। पद्मिनी, देवदत्त की आवाज, कपिल की आवाज, खुशी से चीख कर। कपिल, देवदत्त उत्साह से उनकी ओर बढ़ती है पर दूसरे ही क्षण ठिठक कर जड़ खड़ी रह जाती है। कपिल पद्मिनी को देखकर धीरे से, कौन? देवदत्त। पद्मिनी? कपिल, क्या हो गया? माथा क्यों भारी भारी सा है? देवदत्त, मेरा शरीर क्यों इतना भारी है? पद्मिनी दिग्भ्रमित होकर इधर उधर दौड़ती हुई, यह मैंने क्या कर डाला, क्या कर डाला? माँ काली, तुम ही अब सहारा दो। हाय राम, अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ? माँ दुर्गे, तेरे सिवाय कौन है मेरा, क्या करूँ? देवदत्त जैसे चैतन्य प्राप्त करता हुआ, क्यों रो रही हो? कपिल, क्या बात है? पद्मिनी, क्या बताऊँ देवदत्त, कैसे समझाऊँ? कपिल, देवी प्रत्यक्ष प्रकट हुई, उसने तुम दोनों को प्राणदान दिए, लेकिन उतावली में मैंने उस अंधेरे में, देवी तू ही मेरी रक्षा कर, मेरी लाज रख, मुझसे मस्तकों की अदला बदली हो गई, सिरों की अदला बदली हो गई, मुझे क्षमा करो, मुझसे भूल हुई, मैं पापनी हूँ, जीने योग्य नहीं हूँ, क्षमा करो, क्षमा करो। कपिल देवदत्त को देखकर, क्या सिरों की? देवदत्त कपिल को देखकर, अदला बदली? गहरा मौन। पद्मिनी रोती है, सहसा देवदत्त और कपिल ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं और लगातार हंसे ही जाते हैं। कपिल हंसता हुआ, बदले हुए सिर देवदत्त, सिरों की अदला बदली। दोनों आपस में गले लगते हैं। पद्मिनी जो अब तक रोती थी, दोनों को हंसते देखकर पहले भौचक्की सी हो जाती है, फिर धीरे से वह भी हंसती हुई उनके पास जाती है। कपिल, बदले हुए सिर देवदत्त, कैसा कमाल है, इतने बरस केवल मित्रता का संबंध रहा। कपिल, अब रक्त का संबंध भी हो गया, रक्त का संबंध। देवदत्त, हा हा, पद्मिनी कितनी कृपा की कृपा है तुम्हारी, तुम क्षमा मांग रही थी, तुम्हें तो धन्यवाद देना चाहिए कि। दोनों हाथ में हाथ मिलाए, पद्मिनी का हाथ भी खींच कर गोल गोल घूमते हैं, नाचते हैं, हंसते हैं। तीनों अदला बदली, हेरी फेरी, कोई जीता, बोल दे, बता दे, छूटा कौन? पद्मिनी हार कर जमीन पर बैठ जाती है, वे दोनों भी पद्मिनी के दोनों तरफ गिर जाते हैं और वहीं पर लोटपोट हो जाते हैं। कपिल, उफ, मैं थक गया। पद्मिनी, दम ही नहीं बचा? देवदत्त, ऐसा कहीं भी कभी भी नहीं हुआ होगा। पद्मिनी, तुम दोनों के सिर कटे देखकर मैं बहुत डरी थी, पर जब तुम दोनों फिर उठ बैठे तब तो कुछ पूछो मत, डर के मारे मेरा बुरा हाल था। देवदत्त कपिल से, क्या अब मैं एक छलांग में पेड़ पर चढ़ सकूंगा? कपिल देवदत्त से, और मैं आरती के साथ बायां हाथ घुमाए बिना घंटी बजा सकूंगा? दोनों के ठहाके। कपिल, कहने से कोई यकीन नहीं करेगा। पद्मिनी सासा, किसी से कहेंगे ही नहीं। देवदत्त, अपना भेद अपने पेट में। पद्मिनी, हाँ हाँ पेट में ही तो है। तीनों के ठहाके। कपिल, पर यह कैसे होगा, पता तो लगेगा ही, हमें देखते ही लोग समझ जाएंगे। देवदत्त, कुछ नहीं समझेंगे। कपिल, लेकिन। देवदत्त, शर्त बदलो। कपिल, पर यह कैसे संभव है। देवदत्त, देख लेना, अभी से चिंता क्यों। पद्मिनी, अब उज्जैन नहीं, सीधे घर चलेंगे। कपिल, हाँ हाँ। पद्मिनी, चलो अब चलें। देवदत्त, इस उज्जैन की जीवन भर याद रहेगी, चलो। तीनों धीरे धीरे उठते हैं, फिर रह रह कर हंस पड़ते हैं। जैसे ही कपिल और देवदत्त एक दूसरे को देखते हैं, अपनी हंसी नहीं रोक पाते। पद्मिनी भी बीच बीच में खूब हंसती है। पद्मिनी देवदत्त से, सुनो, घर के लोगों से यह भेद कैसे छिपाएंगे, तुम्हारा बदन उघड़ते ही वे भांप लेंगे। देवदत्त, क्या भांप लेंगे, मैं और तुम इस तरह से रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बस सब चुप रहेंगे। कपिल घबरा कर, क्या मतलब। देवदत्त, अरे अपने घर के लोगों का शरीर कौन परखता है। कपिल, मेरा वह मतलब नहीं था। पद्मिनी, मुझे यकीन नहीं होता, मैं तो अभी से घबराने लगी हूँ, अंत में गालियां मुझ पर ही पड़ेंगी। देवदत्त, घबराओ मत मैं। कपिल, पर तुमसे पद्मिनी का क्या संबंध। देवदत्त हटाकर, क्या मतलब। कपिल, पद्मिनी मेरे साथ जाएगी, मेरी पत्नी मेरे साथ ही चलेगी ना। देवदत्त और पद्मिनी दोनों के मुख से आश्चर्य सूचक ध्वनियां निकलती हैं। पद्मिनी, यह क्या कह रहे हो कपिल। कपिल, क्या कह रहा हूँ, तुम देवदत्त की स्त्री हो ना, मुझे देवदत्त का शरीर मिला है, इसलिए तुम मेरी स्त्री हुई। पद्मिनी, चुप रहो। देवदत्त, मूर्खों की तरह बको मत, मैं देवदत्त हूँ। पद्मिनी कपिल से, लज्जा नहीं आती ऐसी बातें बनाते। कपिल समझाते हुए, लेकिन पद्मिनी देवदत्त का शरीर मेरा है अब। देवदत्त, हाँ हाँ हम जानते हैं, तोते की तरह बार बार रटने की आवश्यकता नहीं, शास्त्रों के अनुसार सिर ही मनुष्य का चिन्ह है। कपिल अब कुछ नाराज होकर, होगा, पर यहाँ प्रश्न है, पद्मिनी किसकी पत्नी है। दाहिना हाथ उठाते हुए, विवाह मंडप में इसी ने इसका हाथ पकड़ा था, इसी शरीर के साथ यह पिछले दिनों रहती आई है और इसके पेट में इसी शरीर का बीज पड़ा है। पद्मिनी तर्क से आतंकित होकर चीखते हुए, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देवदत्त के पास दौड़कर, नहीं हो सकता ना देवदत्त। देवदत्त, कभी नहीं प्रिय, घबराओ नहीं, वह नादान है, तभी अनर्गल बके जा रहा है। कपिल से, विवाह व्यक्ति से होता है, शरीर से नहीं, इसने देवदत्त के शरीर से नहीं देवदत्त से विवाह किया था, देवदत्त व्यक्ति से। कपिल, हाँ ठीक, लेकिन देवदत्त का शरीर अब मेरा है, इसलिए मैं ही व्यक्ति देवदत्त हूँ। देवदत्त, मेरी बात सुन लो, अंगों में सबसे ऊपर और सबसे श्रेष्ठ अंग सिर है, वह अंग मेरे पास है, इसलिए देवदत्त स्वयं मैं हूँ, यही शास्त्र वचन है। कपिल, शास्त्रों की भली चलाई, तुम्हें उन्हें तुम मनमाना तोड़ मरोड़ सकते हो, पर अग्नि को साक्षी करके इसने इस शरीर के साथ ही विवाह किया था, उसी साक्षी से मैं ही देवदत्त हूँ। देवदत्त व्यंग्य से हंसकर, सुना पद्मिनी, कहता है देवदत्त हूँ और शास्त्रों की निंदा भी करता है, बताओ देवदत्त कभी ऐसा कर सकता है। कपिल, तुम बकते हो, मैं रत्ती भर परवाह नहीं करता, चलो। पद्मिनी उसकी ओर कदम बढ़ाता है, पर देवदत्त सामने आ जाता है। देवदत्त, खबरदार। पद्मिनी, चलो देवदत्त, इस उजट से क्या उलझना, यहाँ से चलें। देवदत्त, चलो। कपिल दोनों के बीच खड़ा होकर, मेरी स्त्री को कहाँ ले जा रहे हो मित्र। देवदत्त, परे हटोगे या फिर मैं। कपिल, बीच में तो तुम आकर खड़े हुए। देवदत्त कपिल को किनारे धकेल कर, कहा ना परे हट जा सुगर। कपिल विजयी भाव से, देखो पद्मिनी, देखो देखो, बल दिखा रहा है, और कैसी भाषा, सोच लो पद्मिनी, देवदत्त कभी ऐसा व्यवहार करता? यह तो कपिल का स्वभाव है। देवदत्त, चलो पद्मिनी। कपिल, जाओ, पर तुम समझते हो मेरी स्त्री को भगा कर ले जाओगे और मैं चुप बैठा रहूंगा? आखिर जाओगे कहाँ? चलो मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ, जाकर सड़कों पर ऐसा हंगामा मचाऊंगा कि देखना। पद्मिनी, इसे चीखने दो, तुम चलो। देवदत्त, रुक कर, नहीं, इसे यहीं सुलझाना होगा, शहर में बड़ी बदनामी होगी। पद्मिनी, वहाँ कौन इसकी बातें सुनेगा, चेहरे से सब तुम्हें को देवदत्त मानेंगे। कपिल, हाँ हाँ, धर्मपुर के लोग कपिल की फौलादी काया को नहीं पहचानेंगे, सैकड़ों कुश्तियों में देखी हैं, देखें लोग पहचानते हैं कि नहीं। पद्मिनी गिड़गिड़ाती हुई, हमें क्यों सता रहे हो कपिल, इतने दिन हमारे मित्र रहे, घर में रहे, और अब तुम्हारा यह बर्ताव। कपिल, मैं जानता हूँ तुम क्या चाहते हो पद्मिनी, देवदत्त का मस्तिष्क और कपिल का फौलादी शरीर। पद्मिनी, चुप रहो दुष्ट। देवदत्त गर्व से, मान लो चाहती है तो इसमें क्या बुराई है, पुरुष के सुंदर शरीर की ओर स्त्री का आकर्षण स्वाभाविक ही है। कपिल, ठीक है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह ऐसे आदमी के साथ रहने लगे जो उसका पति नहीं, इसमें जरूर बुराई है। पद्मिनी रोते हुए, हाय भगवान, इस बदमाश से कैसे पीछा छूटेगा, चलो कहीं दूर चलें, कहीं भी, जंगल में, बिहड़ में, चाहे जहाँ। कपिल, अब मुझे जान से मारकर ही तुम सुख से रह सकोगे, मार डालो, मैं कपिल से टक्कर नहीं ले सकता। पद्मिनी नया तर्क देती हुई, मैंने तुम्हें जीवन दिलाया, इसका तो उपकार मानो। कपिल, कैसा उपकार, जीवन नहीं दिलाती तो तुम विधवा हो जाती, ऋणी तो होना ही उसे होना चाहिए कि मेरी पत्नी ने उसका जीवन बचाया, उल्टे वह तुम्हें उठाए लिए जा रहा है। पद्मिनी, हाय राम। देवदत्त, इस तरह झगड़ा कैसे सुलझेगा कपिल। कपिल, देवदत्त कहो। देवदत्त, जो भी हो, इस तरह तो समस्या नहीं सुलझेगी। कपिल, कैसे सुलझेगी, विवाह का अर्थ केवल एक करार होता तो सुलझ जाती, पर पद्मिनी की सनक को समस्या का हल कैसे मान लूं। देवदत्त, तो फिर क्या हल है, आखिर इस समस्या का हल क्या है। तीनों अपने अपने स्थान पर जड़वत हो जाते हैं। भागवत, क्या है, क्या है उत्तर, इन तीनों अभागों के अधर में लटके जीवन की इस समस्या का आखिर क्या हल है, क्या इनका भाग्य पहली ही बना रहेगा, ऐसा हुआ तो इस सभा में मौजूद गुणीजनों का अपमान होगा, यह तो उनके गले में प्रश्न चिन्ह लटका कर विदा लेना हुआ, यह उचित नहीं, इसका हल तो खोजना ही होगा, बड़ी सावधानी से खोजना होगा, जल्दी मचाने से कोई लाभ नहीं, इसलिए अब थोड़ी देर के लिए विश्राम हो जाए, या आप मध्यांतर करिए, जाइए चाय पीजिए, इस परिस्थिति पर विचार कीजिए और अपने अपने हल निकाल कर लौटिए, उसके बाद यह तलाश आगे चले। पटीजन आते हैं और कपिल, देवदत्त, पद्मिनी के आगे पर्दा तान कर खड़े होते हैं। भागवत और मंडली रंगमंच पर से चले जाते हैं या वहीं चाय मंगवा कर पीते हैं।